ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಸವಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನ ಉಠತೆ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಪ್ರಶ್ನ, ಅನಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮೇರೇ ಹೀ ಸಾಥ್ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮೇನೆ ತೋ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕಭಿ ದುಃಖ ನಹೀ ದಿಯಾ, ಮೇರೆ ಕೋ ಕ್ಯೂ ದುಃಖ ಮಿಲ್ ರಹಾ, ಮೇ ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಇತನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಸೇ ಚಲತಿ ಹೂ, ಪರ್ ವೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೇ ಸಾಥ್ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಯೂ ಕರತೆ ಹೈ. ಮೇ ದೂಸರೋ ಕೆ ಭಲಾಯಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಲಾಯಿ ಚಾಹತಿ ಹೂ, ಭಲಾಯಿ ಕರ್ತಿ ಹೂ, ಪರ್ ಸಾಮನೆ ವಾಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಕಿ ಮೇರೇ ಕೋ ಸಮಜತೆ ಹೀ ನಹೀ ಹೈ, ಉಲ್ಟಾ ಔರ್ ಹೀ ಪತಾ ನಹೀ ಕ್ಯಾ, ಔರ್ ಹೀ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಕ್ಯೂ ಐಸಾ ಹೋತಾ. ಕೈ ಬಾರ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ಭೀ ಹಮ್ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಖುಷ್ ನಹೀ ರಹತೆ, ವೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೃಪ್ತ ಜಿಂದಗಿ ಜೀ ನಹೀ ಪಾತಾ. ಐಸೆ ನಹೀ ಕಿ ಕಿಸೀ ಚೀಜ್ ಕಿ ಕೋಯಿ ಕಮಿ ಹೈ, ಮಗರ್ ಮನ್ ಜೈಸೆ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಲಗತಾ. ಆಪ್ ಸಮಜ್ ರಹೇ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಕೋ? ಏಕ್ ಯೇ ಸಾರೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಇತನೆ ಇತನಿ ಬಹನೆ ಹೈ, ಇತನೆ ಔರತೆ, ಯಹಿ ಮೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಡಿ ಥಿ, ಇನ್ಹೀ ಕೆ ಸಾಥ್ ಪಡ್ನಾ ಥಾ, ಇತನೆ ಸಾರೆ ಆದಮಿ, ಇನ್ಹೀ ಯಹಿ ಮೇರಾ ಪತಿ ಬನ್ನಾ ಥಾ, ಯಹಿ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಬನ್ನೆ ಥೆ, ಪತಾ ನಹೀ ಕಹಾಂ ಆಕೆ ಫಸ್ ಗಯೆ ಭಯ್ಯಾ, ಅಬ್ ತೋ ನಾ ನಿಕಲ್ ನಹೀ ಪಾತೆ ನಾ ರಹ ಸಕತೆ, ಫಸ್ ಗಯೆ. ಬಸ್ ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಜಿನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಕೋಸ್ತೆ ರಹತೆ, ಕರೇ ಭೀ ಕ್ಯಾ, ಛೋಡ್ ಕೆ ಭೀ ನಹೀ ಜಾ ಸಕತೆ, ರಹ ಭೀ ನಹೀ ಸಕತೆ. ಯೇ ಹಾಲತ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ, ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ, ಹಾಥ್ ನಹೀ ಉಠಾನಾ, ಅಪ್ನೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಬೈಠೆ ಹೈ, ಬಾಜು ಆಜು ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೆ, ಘರ್ ಜಾಕೆ ರೋಟಿ ಶೋಟಿ ಖಾನಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ, ಬೋಲ್ನಾ ನಹೀ, ಠೀಕ್ ಹೈ ನಾ, ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಮೇ ರಖ್ ಲೇನಾ. ಔರ್ ಪ್ರಶ್ನ ಯೇ ಹೈ, ಸಹಿ ಕ್ಯಾ ಗಲತ್ ಕ್ಯಾ, ಹಮ್ ಸಹಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹೆಂಗೆ, ಗಲತ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹೆಂಗೆ. ಮುಜೆ ಸೋ ಜೋ ಸಹಿ ಲಗ್, ಜೋ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಲಗ್ತಿ ಹೈ, ಆಪ್ಕೋ ಶಾಯದ್ ವೋ ಗಲತ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ, ಜೋ ಆಪ್ಕೋ ಸಹಿ ಔರ್ ಸೀಧಿ ಸಿ ಬಾತ್ ಲಗ್ತೆ, ಶಾಯದ್ ವೋ ಮುಜೆ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಲಗ್ತಿ. ತೋ ಕ್ಯಾ ಸಹಿ ಗಲತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಫರ್ಕ್ ಹೈ, ಆಪ್ಕೆ ಲಿ ಅಲಗ್ ಸಹಿ ಔರ್ ಮೇರೆ ಲಿ ಅಲಗ್ ಸಹಿ ಹೈ, ಪಾಪ್ ಕ್ಯಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಯಾ. ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ತೋ ಕಭಿ ಪಾಪ ನಹೀ ಲಗ್ತಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕೆ ಲಿ ವೋ ಧಂಧಾ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಲಿ ತೋ ರೋಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ತೋ ಕಭಿ ದಿಲ್ ಶಾಯದ್ ಪಹಲಿ ದುಬಾರಾ ಖಾಯಾ ಹೋ, ಪರ್ ಐಸಾ ನಹೀ ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ದಿಲ್ ಖಾತಾ ರಹೆ, ಉಸ್ಕೋ ತೋ ಪಾಪ ಭೀ ನಹೀ ಲಗ್ತಾ. ಔರ್ ಜೋ ಅಗಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾಪ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಹಮೇ ಠೀಕ್ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಕ್ಯಾ ಪಾಪ ಔರ್ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ ಅಲಗ್ ಹೈ, ಫರ್ಕ್ ಹೈ? ಜಾತಿ ಮತ ದೇಶ ಪ್ರಾಂತ ಮೇ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಹೈ, ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸತ್ಯ ಅಲಗ್, ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಸತ್ಯ ಅಲಗ್, ಬಿಹಾರ್ ವಾಲೋಂಕೆ ಸತ್ಯ ಅಲಗ್, ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಲೋಂಕೆ ಲಿಯೆ ಸತ್ಯ ಅಲಗ್, ಪಂಜಾಬ್ ವಾಲೋಂಕೆ ಸತ್ಯ ಅಲಗ್, ಐಸಾ ಹೈ ಯಹ ಸತ್ಯ ಔರ್ ಅಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಔರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಜೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಅಚ್ಛಾ ಬುರಾ, ಸಹಿ ಗಲತ್, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಹೈ, ವೋ ಜರಾ ಹಾಥ್ ಖಡಾ ಕರಿಯೆ. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸಾನ್ ಪೂರಿ ಸಭಾ ಮೇ, ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಭೌತಿಕ ಹೋ ವೋ ಹೋ ವೋ ನಹೀ, ದಿಲ್ ಸೇ ಸಮಜ್ ಕೆ ಬೋಲಿಯೆ. ಯೇ ಬಾತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೌತಿಕ ವೋ ಯೇ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಉಪ್ಪರ್ ನೀಚೆ ಇಧರ್ ಇಧರ್ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಅಂದರ್ ಸೇ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಜೋ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಸತ್ಯ ಔರ್ ಅಸತ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಔರ್ ಪಾಪ, ಸಹಿ ಗಲತ್, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ایک ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، جو صحیح ہے وہ سارے کے لیے صحیح ہے، جو غلط ہے سب کے لیے غلط ہے، جو ستی ہے ستی ہے، جو پاپ ہے وہ سب کے لیے پاپ ہے۔ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریے۔ تھینک یو۔ دونوں میں جو ہاتھ نے کھڑا کیا وہ کس شرینی میں جائیں گے؟ پتا نہیں، اس لیے یہ ڈاؤٹ فل ہے۔ جی، ڈاؤٹ فل، اس میں اٹھائیں گے پتا نہیں غلط نہ ہو جائے، اس میں اٹھائیں گے غلط نہ۔ ہاں جی، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ انسان کے من میں بہت سارے سوال ہے، اتنے سارے، کئی بار ان سوالوں کے جواب ہی ہمیں ملتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کئی بار من پریشان بھی ہوتا ہے اور کیا نرنے لے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا لے تو بھی انسان کی زندگی جیسے ڈھول کی طرح بن جاتا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، دونوں طرف بھی ہم ہی کو پڑ رہا ہے، ہاں جی، اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا۔ اور اس لیے ایشور جو گیان کا ساگر، سب کچھ جاننے والا رچیتا، وہ ہر انسان کے کرم کے گتی کو بتاتا ہے۔ آج ہم جو بھی ہیں، جسی بھی حالت میں ہیں، جیسی بھی ہماری مانسک ستھتی ہیں، بوتک ستھتی ہیں، ہمارے پریسر ہیں، جسی بھی گھر میں ہیں، جو ہمارے آس پاس ہیں، جن کے ساتھ ہم نے جنم لیا، جن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی بانٹی ہیں، جن کے ساتھ ہم رات دن کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ہی کرموں انوسار بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی کارن نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے؟ آج میں جو ہوں، میں جیسے ہوں، جن کے ساتھ ہوں، جو میرے آس پاس ہے، یا کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے بھی، سب کچھ بھی میرے ہی کرموں کے پھل ہے۔ کوئی بھی، آپ ہزار کارن دے سکتے ہیں، 1000 reasons، ہزار کارن آپ دے سکتے ہیں، مگر ایکچوئل بات، واستوکتا یہ ہے، کوئی بھی انسان سنسار میں اپنے کرموں سے بھاگ ہی نہیں سکتا۔ کہاں تک بھاگو گے، کتنا دور بھاگو گے؟ شری رام چندر بھی اپنے کرموں سے چھوٹ نہیں پائے، 14 سال ان کو بھی بھٹکنا پڑا، جن کو لوگ بھگوان سمجھ کے پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کرموں سے بھاگ نہ پائے۔ آپ اور ہم کیسے بھاگ سکیں گے؟ کئی بار لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تو میرا پڑتا ہی نہیں ہے، چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جی اس آفس میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنا پسند نہیں ہے، چلو آفس چینج کر دیتے ہیں۔ یہ آس پڑوسی جو ہے نا، ٹھیک والے نہیں ہیں، گھر چینج کر لو۔ اب بھاگو گے کہاں تک؟ کیا کیا چینج کرتے رہو گے؟ ان سے ڈیوورس کرو، دوسری سے کر لو، ان کو چھوڑو، ان کو لے لو، واٹ ڈفرنس اٹ میکس، کیا فرق پڑے گا؟ ایک بات سمجھ لیجیے، جو بھی آپ کے ساتھ ہے ان سے بہتر تو آپ کو ملنا ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کے ساتھ اچھے رہو۔ بہتر ملنا نہیں ہے، ہاں اس سے بدتر مل سکتا، اس سے بدتر مل سکتا، 4 دن سب اچھا رہے گا، سب اچھا رہے گا، ایسا لگے گا اچھا ہوا کہ میں یہ نرنے لیا، صرف 4 دن، آپ گنتی کر لیجیے، ہو سکتا ہے 4 دن سے بھی کم ہو۔ 5واں دن سے اصلی رنگ، اس لیے بھاگو نہیں کسی سے، سمسیاؤں سے بھاگنا، لوگوں سے بھاگنا، परिस्थितियों से भागना, कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे, भाग भाग के अब थक जाओगे, पर कर्म पीछे नहीं छूटेगा। किया हुआ मैंने ना, मेरा ही किया हुआ पल्लू में बंधा हुआ, इसको लेकर के मैं कहीं भी भागूंगी, ये तो मेरे साथ ही है ना, पल्लू तो मेरे पीछे पीछे ही तो आएगा। कर्म भी ऐसा है, इसलिए इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। मेरे ही साथ ऐसा क्यों, नॉट टू वरी, इसमें न चिंता की बात है, न घबराने वाली बात है, न ही सोचने वाली बात। हाँ, हमने जाने अनजाने में कैसे भी कर्म किए हैं, उससे छूटने के लिए भी उपाय भी है। ताले हैं तो चाबी भी तो है ना, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं होंगे सिर्फ ताले बनते और चाबी नहीं बनते होंगे, ताले के साथ साथ ही चाबी बनती है ना, ये बात अलग है। आपने चाबी खो दी है कहीं रख के भूल गई होंगे या खो दी होंगी, पर चाबी तो है ना, हर समस्या के लिए समाधान है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ही हो, आपके आसपास ही हो, पर आपको देखने की क्षमता हम में नहीं हो। इसलिए जिंदगी में कोई इंसान हमारे लिए समस्या नहीं है, कोई परिस्थिति हमारे लिए समस्या नहीं है। कई बार लोगों को खुद ही खुद से ही नफरत, खुद ही खुद से समस्या लगता है, उनको लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। ऐसा मनोभाव रहना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज हम यहां जो बैठे हैं, अपनी जिंदगी की एक ऐसी बात जानने की कोशिश करेंगे जो सारे समस्याओं के समाधान है, चाबी है, और इस चाबी से आप हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ऐसी बहुत कठिन परिस्थिति में भी आप उसको हल्का ले पाते हैं। कई बार हमें अनजान के कारण, अज्ञान के कारण भी हमें बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं, जबकि वो ऐसी दुख उठाने वाली बात है ही नहीं, मगर आप दुखी हैं। इट्स जस्ट ओनली यू डोंट नो, आपको सिर्फ आपको पता नहीं है, आप अनजान हैं। स्ट्रेस, ओके। आज व्यक्ति जो है वो एक तो अपने कर्मों से है, व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है, बहुत ऊंचा उठता है अपने कर्मों से, व्यक्ति बहुत नीचे गिर जाता है, इतना हद तक कि वो खुद अपने आप से आंख नहीं मिला पाता अपने कर्मों से। जो इंसान अपने नजरों से गिरता है ना, वो कभी उठ नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल फिर वापस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, हिम्मत से जीने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो इंसान खुद के आंखों से, खुद के नजरों से गिर जाए। हाँ जी, आप सुन रहे हैं कि सो गए? हाँ, बीच बीच में हाँ हाँ करना ताकि मुझे लगे कि आप जागृत है। हाँ जी, ओके। वैसे पाप पुण्य, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय सारे सृष्टि के लिए एक है। जैसे सूर्य सृष्टि के लिए एक है, अमेरिका में एक सूर्य, इंडिया में एक सूर्य, पंजाब में एक सूर्य, राजस्थान में एक सूर्य, ऐसा तो नहीं ना। चांद सूर्य सितारे नक्षत्र जैसे संसार के लिए एक होते हैं, ऐसे सही और गलत भी हम सबके लिए एक ही है। हम लोगों के संस्कार अलग अलग हैं, जैसे किसी ने कहा नजरिया, हम सबके संस्कारों के कारण नजरिया अलग है। हैं जी, जैसे ये फूल है, आपके सामने फूलदाने दिख रहा, दिख रहा। अब यहां पे 300 लोग बैठे होंगे जी, 400 दिखते तो है, आधा 100 तो बाहर ही घूम रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उनका अपना। अब जितने लोग यहां बैठे हैं, फूल तो वही रंग रूप वही है, फूलदाने भी वही है, पर क्या ये देखने वाले के मन में एक ही विचार उत्पन्न होते हैं? नहीं, अलग अलग हैं। जबकि फूल एक है, विचार अलग क्यों? ऐसे ही सत्य असत्य, न्याय और अन्याय एक होने के बावजूद भी लोगों के संस्कार अलग हैं, इसलिए लोगों के विचार अलग हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझ अलग है। बाकी रूप तो एक ही है, आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो हर एक अपने अपने मन की बात है, बट यूनिवर्सल जो बात है वो तो एक ही होती है। ओके? कोई भी कर्म अपने आप में सही गलत नहीं होते, कर्म अपने आप सही गलत नहीं होता, हर कर्म के पीछे कर्म करने का उद्देश्य जो है, मनोभाव जो है, इंटेंशन, वो सही गलत है। ओके? अब फॉर एग्जांपल, एक किलर है, मन खूनी है, खूनी ओके, किसी का कत्ल करता है, एक चाकू से किसी का गला काटता है, आप इसको क्या कहोगे? वो पाप है कि पुण्य? पाप है, क्योंकि इसने गला काटा, उससे पैसे ले ली और उसको खून बहता रहा एंड जो भी हुआ। अच्छा, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है समझो, वो डॉक्टर भी गला काटता है क्योंकि थायराइड यहां होता है, पता है, तो उसको भी, उसको ठीक करना हो तो यहां गला काट के ऑपरेशन करना होता है, तो भी काटता है, हो सकता है वही चाकू यूज करता हो, ऐसा ही वाला चाकू यूज करता हो, और जब डॉक्टर गला काटता है तब भी खून तो निकलेगा, उसको दर्द तो होगा, हो सकता वो बेहोशी करके करता है, इसके पास पैसे बिल तो भरना पड़ेगा, पैसे भी जाएगा, पर जब व्यक्ति गला कटवा के खून बहवा के पैसा देके जब बाहर निकलता है, होश आता है, वो हाथ जोड़ के डॉक्टर को कहता है आप तो भगवान हैं, उसने भी गला काटा, इसने भी गला काटा, ये भगवान क्यों, ये पापी क्यों? कर्म एक ही है, कर्म एक जैसे, दोनों ने काटा, पर एक पुण्य के खाते में जाता, एक पाप के खाते में। क्यों? कि कर्म अपने आप में सही गलत नहीं है, कर्म करने के पीछे जो भाव है वो पाप और पुण्य में गिना जाता है। अभी डॉक्टर का जो भाव है बचाने का, उसको राहत देने का, उसको ठीक करने का, शफा देने का, और जो किलर है, जो मर्डरर है, खूनी है, वो उसको परवाह नहीं है कि ये व्यक्ति एक जिंदगी को खत्म करके भी उससे कुछ लूटना है, दूसरों के जान के परवाह किए बगैर, जान के कीमत पर वो कुछ हासिल करना चाहता है, तो ये जो मनोभाव है वो पाप है। वो कर्म क्या करता वो पाप और पुण्य नहीं है, मगर किस भाव से वो कह रहा है, कर रहा है, वो पाप और पुण्य है। समझ आई? ओके ओके। आप आए हमारे घर या हम आए आपके घर, हम आपको बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, आइए बैठिए, अरे आप कैसे हैं, इतने दिन से तो आपको देखा ही नहीं, आपको हमने बहुत याद किया, पता है आप क्या लेंगे, बड़े प्यार से आपको सम्मान से हम आपको पूछ रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो कर रहे, खातरी कर रहे हैं, मगर मेरे मन में कुछ गलत भाव है। आप तो मेरे घर आए हैं, अब मैं देख लूंगी, हैं जी, अब उसको चाय पानी पिला के फिर मेरे को भी तो मौका मिलेगा ना, अब मौके के तलाश में हूं। अब तीसरा व्यक्ति जब मुझे देखेगा कितना प्यार से, इज्जत से खातरी कर रही हूं, तो वो उनके मन में क्या समझेंगे क्या, ये बहन जी तो बहुत अच्छी है, इतनी मीठी बोलती है, हाँ जी, क्या चाय पानी पूछती है, समोसे भी पूछ लिया भाई, सब खिला रही है पिला रही है। पर किसी को ये नहीं मालूम मेरे मन के ये बोलने के शब्दों के पीछे जो मेरे मन है वो मन में भाव क्या है। कुछ लोग बड़े रफ बोलते हैं मगर इनके मन बड़े अच्छे, बहुत सॉफ्ट, नरम दिल वाले होते हैं। थोड़ा कड़वा हो सकता है बोल हो, दिल बड़े अच्छे वाले होते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते होंगे। मगर तीसरा व्यक्ति जब वो देखता है, उनको लगता है इनके ये बोल कैसे रहे, ऐसे भी कोई बोला जाता है क्या, तो बोली इनका ऐसा है, पता नहीं इनका क्या मन में होगा, पर जरूरी नहीं है उनके मन में कोई ऐसा भाव हो भी। जो कुछ भी सफेद है वो सारे दूध तो हां नहीं है जी, फिनॉल भी सफेद है पर पीते थोड़ी हैं, क्योंकि वो दूध तो है नहीं। जो भी चमकता वो सारे हीरे तो नहीं होते ना, हीरे तो हीरे हैं। ऐसे व्यक्ति के मन के पीछे जो भाव है वो पाप और पुण्य में, पुण्य के खाते में जाते हैं। आप क्या करते हैं और व्यक्ति करता भी हर कर्म उस भाव के पीछे ही करता चला जाता है। जिनके दिल साफ है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, चाहे 10 लोग गलत लोगों के बीच में रहते भी, यदि मेरे दिल में शक्ति है, मेरा दिल दृढ़ है, मन शक्तिशाली है, मन साफ है, दिल साफ है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कोई आपको हिलाए भी, आप गलत काम कर भी सके, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके भाव है ही नहीं, आपके मन में ऐसा विचार ही नहीं है, हैं जी। तो जब विचार ही नहीं है तो करेंगे कैसे। अब इस भाई साहब के पास अच्छे बड़े पर्स गोदी में लेके तब से बैठे हैं ऐसे पकड़ के, पता नहीं उस बैग में क्या है। हाँ जी, वो छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, मेरे मन में ये भाव ही नहीं है कि उसको उठा लो, उठाने का, चोरी करने का संकल्प ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ना वो उठा के गोदी में रखा हो, सिर पर रखा हो, उसमें पैसे हो, ही हीरे हो, या कुछ भी ना हो, क्या फर्क पड़ना, तो मेरा थॉट ही नहीं है ना। यदि मेरे मन में ऐसा कोई थोड़ा सा भी भाव है तो हर किसी के पर्स पर मेरा नजर जाएगा। पर्स ही क्यों, किसी के जेब भी थोड़ा सा ऐसा होगा ना बड़ा, मुझे लगता है ये जेब तो बड़ा है, भरा भरा लगता है, देखो ये भाई साहब के जेब तो बड़ा भरा भरा लग रहा, पता नहीं क्या होगा, तो मेरा मन, आप यहां कुछ भी कर्म के कुछ भी सुना रहे होंगे, मेरा सारा ध्यान वो जेब के पीछे रहता है, ये भाई साहब कहां उठते, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं भैया, गलत मत सोचना। सारा ध्यान उसी पे रहेगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति के इंटेंशंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं, ऐसे उनके नजर, इनकी दृष्टि, उनके कर्म होते हैं। तो कर्म का बीज है मनोवृत्ति, आपके मन क्या कहता है, कर्म तो बाद की बात है, और यदि हम कर्म कर लिया तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। आप चाहो ना चाहो, आपको तो वो कर्म मिलना ही है। इसलिए भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं तो इतना अच्छा कर रही हूं, इतना अच्छा करी, कोई पूछता ही नहीं है, अरे कोई तारीफ भी नहीं करता है, कम से कम कोई शाबाशी तो दे, क्या फायदा अच्छा करने का भैया, कोई फायदा नहीं। सारे 10 लोग गलत कर रहे हैं, उनके उनके बीच में रहते यदि मैं ही एक अकेली अच्छी करती रहूंगी क्या फायदा, ऐसा नहीं। जो जैसा करेगा वही वैसा पाएगा। आप 10 जनों को न देखें, 10 क्यों, 100 के 100 हो, यहां के सबके सभी गलत कर रहे हो और आप अकेले ही अच्छे कर रहे हो, आपको अच्छा मिलेगा और बुरा बुरे नजर अब तक पड़ना ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूं, रियल बात है। एक बार एक ट्रेन में आग लग गई थी, उसमें से 12 डब्बे को आग लग गई और 12 डब्बों में कुछ लोग ऐसा हुआ, एक डब्बा ऐसा था कि पूरा जैसे जल गया और उनमें से 53 लोग थे। 53 लोगों में से 52 लोग बुरी तरह से घायल जल गए और 50 लोग तो उसी समय खत्म हो गए, मर गए। इसमें से 2 लोगों को काफी जैसे जल गए थे और वो लोग अंतिम श्वास ले रहे थे। उसी डब्बे में से एक व्यक्ति था करोच तक भी नहीं, आराम से उस डब्बे से बाहर निकल के आया, एक करोच तक भी नहीं आग की। तो उसी डब्बे में से जब 53 लोग थे, 50 लोग मर गए, 2 लोग तो अंतिम इस पे थे, पर एक व्यक्ति ऐसे आराम से निकल के आए उसी डब्बे से, जले नहीं, जलना तो दूर कुछ भी नहीं। अब इसको क्या कहे, कुछ लोग कहते भाई इनका भाग्य था, लक था, ऐसे परिस्थिति में भी उसको कुछ भी नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे, लकी तो कहेंगे, पर ये लक आया कहां से, ऊपर से गिरा था, अपने कर्म। हमारे हाथ में अच्छे कर्मों की पूंजी है, बुराई आपको छू भी नहीं सकती। कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे वो थक जाएंगे करने वाले, आपको दुख देने वाले थक जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे सत्कर्मों का जो बल है, अच्छे कर्मों का सत्कर्मों की जो शक्ति है, वो आपको बचाते जाएंगे, जिंदगी के हर मोड़ में वो बचाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आपको बुराई चाहने वाला उनको बुरा हो जाएगा पर आपको नहीं होगा, करते करते वो खुद ही थक के वो सारे शस्त्र उन्हीं के ऊपर लागू होगा, आप पर कोई प्रहार नहीं हो सकता। ओके? और कर्म 3 प्रकार के, कर्म जैसे बीज हो, बीज होते ना, बीज लाइक ए सीड। अब बीज भी कई प्रकार के होते हैं, एक ऐसा बीज है अभी आप बीज डालो वो तुरंत कल निकल के आएंगे, जैसे सरसों के, पता नहीं आप लोगों को और अच्छा पता होगा, 1-2 दिन में वो निकल आएंगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। कुछ ऐसे बीज है अभी डालो तो साल बाद, 1 साल के बाद उसका फल निकलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे बीज है, एक बीज डालो इसका एक ही फल निकलेगा। कुछ ऐसे बीज है, एक बीज डालो तो अनेक फल निकलेगा और कालो काल सालों साल तक निकलता चला जाता है। जैसे नारियल है ना, एक बार डालो निकलता जाएगा निकलता जाएगा, बार बार बीज डालने की जरूरत नहीं होती। कर्म भी ऐसे, हमारे जो भाग्य के बीज है कर्म। लोग कहते हैं ना, पता नहीं कि कर्म कूटते हैं, किस जन्म में क्या किया था अब ये भुगतना पड़ रहा है, इसने किस जन्म में पता नहीं क्या किया, अरे आलिशान है, महल में बैठा है, बोलता है ना। अब कुछ ऐसे कर्म हैं, अब अभी कर्म करो अभी ही इसको भुगतना पड़ेगा, और आपको पता चल जाता है, अरे कल मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे को शायद ऐसा हुआ होगा, हैं जी। कुछ ऐसे कर्म हैं कभी किया होगा और करके हमारे दिमाग से वो भूल भी गया होगा, पर आज करके वो फल निकल रहा है। आप सोच में पड़ रहे हैं ये किस कर्म का फल है, क्योंकि आप तो बीज भूल चुके काफी साल 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 पहले, ये हो सकता है पिछले जन्म के पिछले जन्म में आपने डाला हो और किसे याद है। आज कौन सा दिन है जी? वीरवार है ना। पिछले वीरवार को नाश्ते में क्या खाया था, किसको याद है? यदि आपके घर में रूटीन है, गुरुवार को यही बनता है, संडे को यही बनता है, तो आपको याद आ जाएगा। कुछ लोग ये पूछते हैं कि नाश्ता क्या है, पहला ये बताओ आज दिन क्या है, क्योंकि दिन के अनुसार नाश्ता बनता होगा। यदि ऐसा है तो हो सकता है आपको याद हो, यदि ऐसा नहीं है तो आपको याद है पिछले गुरुवार क्या नाश्ते में खाया था? पिछले गुरुवार आपने कौन से कपड़े पहने थे? व्हाइट पहने थे? आप रोज ही पहनते होंगे? नहीं, हर गुरुवार पहनते होंगे। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है भैया। 15 दिन पहले क्या पहना था? वही पहना था। पिछले गुरुवार को इस समय क्या कर रहे थे? कुछ कुछ याद नहीं होता है ना, बहुत कुछ याद नहीं। जो इंसान को पिछले हफ्ते की बात नहीं याद होगा, उसको जन्मों के पहले की क्या याद होगी? तो इसलिए हमने बहुत पहले किए हुए कर्म भूल चुके होंगे जो कि बीज है, मगर आज जब इसका फल मिल रहा हम बहुत कंफ्यूज्ड उलझे हुए हैं, ये क्यों मेरे सामने आया है, ये फल किस लिए आया है? हम बीज तो भूल चुके। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती के कारण सालों साल भुगतना पड़ता है। क्या एक शब्द क्या मुख से निकल गया, दुश्मनी, अरे वो तो बहुत छोटी सी बात थी, उसको भुलाया जा सकता था, माफ की जा सकती थी, हैं जी, अपना समझ के छोड़ सकते थे, पर ऐसा नहीं, वो छोटी सी बात किसी के दिल को ऐसा चूर चूर कर सकती है, जो कहने वाला व्यक्ति मर जाए, सुनने वाला व्यक्ति मर जाए, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे इस दुश्मनी चलती रहती। अब कारण पूछो, कई बार कारण नहीं मालूम, उनके नहीं पढ़ते थे, उनके नहीं पढ़ते थे, उनके नहीं पढ़ते थे, क्यों नहीं पढ़ते थे पता भी नहीं। बात इतनी सी छोटी सी होता है ना ऐसे। महाभारत युद्ध इतना बड़ा क्यों छेड़ा, क्यों युद्ध क्यों छिड़ी, युद्ध क्यों आरंभ हुआ? एक शब्द के कारण। वह हंसी में कह गई थी, ये अपना समझ के कही होगी, पर अभिमान किसी के मन में इतना जब होता है, अभिमान को ठेस पहुंचता है तो छोड़ता नहीं है, बदले की भावना में बदल जाता है। भावनाएं जो इंसान के मन में पता नहीं कब क्या रूप ले, कब क्या रूप ले। कहते पानी जहां जहां स्थान मिलता वैसे वैसे चलता चला जाता है, इंसान के भाव भी पता नहीं कहां कहां बह जाए, क्या रूप ले पता ही नहीं चलता। कब आपके मन में दुश्मनी पैदा हो जाए, कब मन में प्यार, कब मन में अच्छा, कब मन, क्योंकि मन जब स्थिर नहीं होता ये सारे भाव बदलते रहते। इसलिए परमात्मा ने हमें ये आत्मा का ज्ञान, जो सबसे पहली बात पहला दिन आपने सुना, वो हमारे भावों को स्थिर रखता है। बहुत सुंदर ज्ञान कि मैं आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं एक लाइट हूं। ये जो ज्ञान है, ये हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं स्थिर करता है, बहता नहीं है। भावनाओं के साथ हम भी बहते नहीं चले जाएंगे, मन स्थिर होता चला जाता है। ओके, अब कर्म तीन प्रकार के हैं आम तौर की बात। वैसे कर्म कहानी बहुत ही गुही होती है, इतना कि सागर की गहराई मापना थोड़ा कठिन है। ऐसे आसमान की ऊंचाई मापना कठिन है। इंसान के कर्मों की कहानी को जानना बहुत कठिन है। चलो सागर की गहराई मापा भी जा सकता, आसमान की ऊंचाई को मापा जा सकता है हर कुछ हद तक, पर इंसान के कर्मों की कहानी को जानना बहुत गहरा है, बहुत गहरा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक बात बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज। यदि कोई नींद भी कर रहा हो, आंखें खोल के कान खोल के सुनिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हुआ है और होगा, इसका कारण है। बिगर कारण के हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि वो कारण हम नहीं जानते होंगे, मगर कारण है, क्योंकि कर्म मैथमेटिक्स है, हिसाब है कर्मों के, ये हिसाब है। जैसे दो और दो चार ही है, साढ़े तीन या पांच, ये ऐसा नहीं होगा, ये हिसाब है ना। ऐसे हर इंसान की जिंदगी में जो इंसान जो कर्म किए हैं, कर रहा है, करेगा, इसका एक्यूरेट प्रिसाइज हिसाब है, इतने के इतने। और जिस भाव से हम कर्म करते हैं, वो कर्म के अनुसार वो मल्टीप्लाई भी होता है। ये ध्यान से सुन लीजिए, अनजान से करने वाले कर्म के फल अलग, जानबूझ के करने वाले कर्म के फल अलग। 2+2=4 ही हमेशा नहीं होता, कर्मों के हिसाब में 2+8 भी हो सकता, 2+100 भी हो सकता, 2+2=0 भी हो सकता, क्योंकि आपने ये हिसाब जो है, किस भाव, आपके भावनाएं क्या है, वो कर्म करने के पीछे आपके मनोवृत्ति क्या है, वो हिसाब है। अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे का 1 का 100 गुना मिलेगा। हो सकता है आपने एक केला ला करके भगवान को अर्पण किया होगा, केला की क्या कीमत होगी, हां जी, पर बड़े प्रेम से, दिल से, निस्वार्थ भाव से किया हो, 1000 गुना भी मिलेगा। अभिमान से आप लाखों किया होगा, इसका क्या फल, जितना ही केले का फल होगा उतना ही उसको मिलेगा, अगले जन्म उसके केले ही मिलने वाला, क्योंकि अभिमान से किया ना, स्वार्थ से किया ना, दुख देने की भावना से किया, मौका ढूंढ करके किया। तो क्या भाव, किस भाव से किया, वो है पुण्य और पाप। अब कर्मों में तीन प्रकार है। नंबर 1, एक है इंसान जो खुद के साथ कर्म करता है। अब आपने खाया, आपका पेट भरा, मेरा पेट तो नहीं भरेगा ना, हैं जी, ऐसा है, आप खाओ और मेरा पेट भरे, ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे काम से हम छूट जाते हैं, आप करो हम आराम से बैठे, पर ऐसा नहीं होता। आप करेंगे, आपके साथ आप जो कर्म करते हैं वो आप ही को उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपने बरसात में भीगे, आपको मालूम है कि बरसात में भीगने से आपको सर्दी जुकाम होंगे, बुखार होगा, मगर आपने आप भीग के आए, आपको मालूम था तब भी आप भीगे, तो बुखार किसको होगा? हमें को होगा। हाँ, ऐसा भी है कि बुखार आपको, इससे ज्यादा बुखार उनके घर वालों को आए, क्योंकि बिल तो उनको पे करना पड़ता ना, तो बुखार उनको ज्यादा चढ़ सकता है, ये भी है बात। चलो, आपको पता है कि ये छोटा है, हाँ जी, ये जो डोर है ना वो छोटा है, आप थोड़े ऊंचे हो, लंबे हो, वहां लिखा पड़ा है माइंड द स्टेप। ये आप सीढ़ी उतर रहे हैं, वहां एक छोटी सी सीढ़ी है, आपको दिखाई नहीं दी जो कि आपको देखना चाहिए था, वहां लाल पेंट भी किया गया, आपने नहीं देखा, तो कौन गिरा? आप गिरे। आपने डोर स्टेप माइंड नहीं किया, आपको सिर में लगा। अच्छा, कई बार ये बहुत ही सूक्ष्म बात मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से सुने, सारे भूलों के एक मुख्य कारण है भूलना। हम लोग इसको बड़ा सहज रूप से, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बड़े आसानी से कह देते हैं, हम भूल गए। अरे, आपके भूलने से पता है कितनी बड़ी भूल हुई? भूलना कोई एक्सक्यूज नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज प्लीज। भूलना बहुत बड़ी भूल है, इसको ऐसा ही ना ले। कई सारे भूले भूलने से होते हैं, या ओके तो ये है जो आपके साथ आपने काम किया, आपने अपने शरीर को ठीक रखा, मन को ठीक रखा, आप खुश रहोगे, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक आपने खाना खाया, समय पर सोए, समय पर सब कुछ किया, आप आराम से रहेंगे। ये अपने साथ इंसान खुद के साथ जो कर्म करता है, नंबर वन। दूसरी बात, इंसान जो दूसरों के लिए करता है, एक अपने लिए खुद के लिए करना, एक है दूसरों के लिए करना, जो मैं दूसरों के लिए करती हूं, मैं आपको देख के मुस्कुराऊंगी, आप क्या करोगे? क्या करेंगे? सोने वाला तो मुस्कुराएगा भी नहीं, और उसको जगा के मुस्कुराएंगे तो और गुस्सा करेगा, मुस्कुराना तो छोड़ो एनीवे। लेकिन आजकल ये भी सोचेंगे, ये मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, मैंने कुछ तो बात है भैया, वैसे तो नहीं मुस्कुराता, आज एक खास मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, तो कुछ तो दाल में काला है। ऐसे भी सोचने वाली जमाना है आजकल। एनीवे, अच्छा, मैंने हैंडशेक करने के लिए, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, आप भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे, हैं जी? मैं प्यार से दो शब्द बोला, आप भी प्यार से दो शब्द बोलेंगे। कोई व्यक्ति खींच के एक चाटा मारता है, अगला व्यक्ति क्या करता है? उसको भी गुस्सा आता है, वो दो मारेगा। मैंने जो दिया वो मुझे मिल रहा है, ठीक है? हर इंसान की यहां पासबुक है। आप लोगों के बैंक में पासबुक होते हैं ना? होते हैं? आजकल पता नहीं होता है नहीं होता, क्योंकि मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है बैंक का ये क्या होता है, पर सुना जरूर है, अकाउंट बुक होता है, पासबुक बोलते ना, हाँ, जिसमें कितना आपने बैंक में डाला है, कितना आपने निकाला है और कितना बचा है, ये होता है ना। इसी ठीक इसी प्रकार यहां पे हर इंसान अपने ही कर्मों से सुख और दुख यहां लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर आइए वो बैग, बैग कहां रखा भैया? चलो वो छिपा के रख दिया, मैं लूंगी नहीं भैया, कोई बात नहीं, गोदी में रखो। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर जी, बैठ जाइए। श्याम सुंदर जी के पास ये बैग है, मेरा नजर तब से, क्योंकि वो पकड़ के बैठे हैं, मेरे को तो बड़ा डाउट आ रहा है कि क्या है इसमें। चलो, श्याम सुंदर जी की ये बैग है। अब मेरे मन में ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। मेरे मन में, मेरे मनोभाव ये विचार आया कि मैं ये पर्स उठा लूं, और श्याम सुंदर जी बड़े व्यस्त हैं सत्संग सुनने में, मैं चुपचाप ऐसे जाके उसको उठा के आ गई। ओके, सत्संग कौन सुनाएगा, ठीक है जी, ओके जी, चलो किसी और ने उठा लिया, बाजू वाले भाई क्या नाम है हाँ जी, चलो इन्होंने उठा लिया, ठीक है, ओके। अब जिस व्यक्ति ने उठाया, जिस व्यक्ति ने उठाया, उसको बड़ी खुशी मिल रही है। एक कर्म इतना सा वहां से उठा लेना, एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा कर्म है। वो बैग उठा करके अब जिसने उठाया उसको बड़ी खुशी मिल रही, आनंद, अरे मेरे को मिल गया। अब श्याम सुंदर जी जब सत्संग सुन के पूरा हुआ और अपना आसपास में देखा, भाई बैग कहाँ, उन पर क्या बीती होगी, बीतेगा, हो सकता है उनकी जिंदगी भर की कोई पूंजी हो सकता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जो बहुत ही जरूरी हो। उस व्यक्ति कितना समय तक परेशान रहता है, दुख उठाता है। अब वो क्यों, श्याम सुंदर जी दुखी क्यों है और कितने समय तक दुखी रहेगा, उसका जिम्मेदार उठाने वाले पर है। अब जिसने उठाया, उनकी जिंदगी के काल में कभी ना कभी उतना दुख उसको जरूर उठाना पड़ेगा, उससे कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि छोटे से कर्म उठाने से उसने अपने ही पासबुक में दुख लिखा, दुख लिखा। तो ये कर्म से उन्होंने दुख दिया, उतना ही दुख उसको कभी ना कभी लेना पड़ेगा। सो खुद अपने हाथों से, अपने कर्मों से वो दुख, वो अशांति, वो जो परेशानी जिससे उस व्यक्ति को हुआ है, वो खुद एक छोटी सी बात से वो खुद लिखी है, ठीक है। अब इनका पर्स खो गया, अब वो व्यक्ति कहीं बड़े बहुत परेशान है, वो है कहीं से भी वो ढूंढ ढांड करके उनको दिया। अब श्याम सुंदर जी को कैसा लगेगा, खुशी मिलेगी। अब इनको कुछ लेना देना, आपका नाम बोला नहीं आपने, मनोहर लाल जी, बैठ जाइए। अब मनोहर लाल जी ढूंढ ढूंढ करके उनको दिया, ठीक है। अब इनका तो कोई लेना देना नहीं है, पर इन्होंने देखा कि श्याम सुंदर जी बड़े परेशान हैं, मेरे बगल में बैठा करते थे, चलो जी पूछ लिया, क्या क्या जी क्या बात है। तो उनको आउट ऑफ वे, उनका काम नहीं है वो, पर जा करके ढूंढ करके उनको दिया। एक छोटा सा ये कर्म से उस आत्मा को कितनी खुशी मिली, वो खुशी इन्होंने, मनोहर जी ने अपने ही एक छोटा सा काम से, कर्म से, यहां पासबुक में वो खुशियां लिख दी। वो जो चैन मिली उस व्यक्ति को, वो चैन, वो आनंद यहां लिख दी। कभी ना कभी उनकी जिंदगी में वो सुख, वो चैन, वो खुशी उनको मिलना ही मिलना है, कोई छीन ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, हमारी जिंदगी में कोई भी हमारे भाग्य छीन ही नहीं सकता। मेरा जो भाग्य है कोई नहीं ले सकता, चाहे हजार कोशिश करे, मेरा जो अच्छाई है, मेरे जो कर्म है, भाग्य कोई छीन ही नहीं सकता। इसलिए हम डरे किस बात, क्यों डरे ना, हम किसी के ले सकते हैं ना हमारा कोई ले सकता। इसलिए कभी भी जिंदगी में डरना नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं ये हो जाए, पता नहीं वो चला जाए, कुछ नहीं होना। यदि हमारा नहीं है, हमने ऐसे गलत तरीके से उसको अपनाया होगा, तो जो हमारा नहीं है वो तो हमारा नहीं ही है। जो हमारा है वो कोई नहीं हाथ लगा सकता। इसलिए कभी डरे नहीं। आजकल दुनिया में इनसिक्योरिटी बहुत है, असुरक्षित बहुत महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते। अपने घर में, अपनों के पास, अपनों के बीच सुरक्षित महसूस नहीं करते, डर बहुत है। पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं। तो ऐसी जिंदगी बीत जाएगी, पर ऐसे वो लोग रहते हैं। लेके तो जाना कुछ भी नहीं है, कितना भी आप अपने पास रख लो, झूठ मूठ बोल के, ये करके वो करके, कितना भी हम अपने पास रख भी ले, लेके क्या जी? ये साड़ी तो छोड़ो, एक रुमाल तक भी नहीं जाना जाएगा। ना ही हम ले आए हैं, ये संसार एक गेस्ट हाउस की तरह होती है, हैं जी। होटल में आप चेक इन करो, आपको वहां सब सुविधाएं दी जाती है, फ्रिज भी है, एयर कंडीशन भी है, टेलीविजन भी है, वो भी है, ये भी है, सब कुछ भी है। जब वो होटल छोड़ के आप जाओगे, सब ले जाओगे, कंबल भी ले जाएंगे, तो फ्रिज भी ले जाएंगे, तो टीवी भी ले जाएंगे, छोड़ जाएंगे ना, क्योंकि कोई और आएगा। ऐसे ही हमें जो कुछ भी मिला है यहां ही मिला है, और जब हमें जाना है यहीं दे के जाना है, क्योंकि होटल से कोई कम नहीं है ना, कोई और आएगा वो यूज करेगा। जब तक है खुश रहें, प्रेम से रहें, अच्छे रहें। जब जाना है खुशी से, प्रेम से, खुशी से जाए, हंसते हंसते, रोके रोके, रो रो के पैदा होते हैं बच्चे, रो रो के हुए थे ना पैदा, हाँ जी। कम से कम मरते मरते हंस हंस के तो जाए, आते समय तो हमें पता भी नहीं था कि हम रो रहे थे कि हंस रहे थे, पर मोस्टली रोते नहीं तो रुलाते भी है, हाँ जी। पर जाते समय हंस के जाना या रो के जाना, ये हमारे हाथ की बात होती है, ठीक है। और तीसरी बात, तीसरा कर्म, हम दूसरों के साथ मिलके करने वाला कर्म। अब फिर आइए श्याम सुंदर जी के पर्स, अब हमें उठाना है, हाँ जी। पर हिम्मत नहीं हो रही अकेले। अब हमने समझा, ये जो चार भाई बैठे, भाई आप हमारे साथ आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप खड़े रहना वहां पे दरवाजे पे, मैं अंदर जाऊंगी, मैं लूंगी, तोड़ूंगी, जो भी करना है वो अंदर जाके करके मैं लेके आऊंगी, और जो मैं ले आऊंगी आपके साथ में शेयर भी करूंगी। तो आपको लगता है हम तो कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ खड़े रहना है, पाप तो कोई और कर रहा है, हमें तो खड़े ही रहना है। अच्छा, मैं जाके जो लेके आऊंगी इन चारों को बांटूंगी, जब इसका फल मिलेगा किसको मिलेगा? सिर्फ मुझे मिलेगा या मेरे साथ जो खड़े थे उनको भी मिलेगा? सबको मिलेगा। तो जब सबको मिलेगा तो सब इकट्ठा कहीं तो पैदा होना पड़ेगा, हैं जी। अड़ोस पड़ोस, माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, ऐसे फैमिलीज ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं कर्मों का हिसाब, जो हम साथ इकट्ठे जो कर्म किए हैं वो इकट्ठे कहीं ना कहीं साथ जन्म लेते हैं। बीवी बच्चे, हैं जी, माँ बाप, क्योंकि उनको साथ वो भुगतना पड़ेगा। आप समझो ये चारों ही, ये कोई मेरे माँ बनेंगे, कोई पिता बनेंगे, मैं कोई भाई बनेंगे, कोई बहन बनेंगे, ठीक है, मैं इनकी छोटी भाई या छोटा बेटा या कुछ भी होंगी अगला जन्म में, समझो। अब क्या होता है कि पाप तो हमने किए हैं, तो मैं पैर मेरा टूटेगा पर रोएंगे ये लोग, क्योंकि मॉरली उन्होंने सपोर्ट किया है, मेंटली मुझे मजबूत करने के लिए वो खड़े रहे। यदि वो न खड़े होते शायद मुझे जाने की हिम्मत ही न होती, है जी, शायद मैं न करती, क्योंकि हिम्मत नहीं था, तभी तो मैंने मदद मांगी, तो मेरे बुरे कर्मों में उन्होंने मदद की। इसलिए कर्म तो मैंने एक्चुअली मैंने किया, इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, पर ये लोग मॉरली फाइनेंशियली ये लोग भोगेंगे। घर में कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे को एक्सीडेंट हुआ, वो आराम से बैठ करके एप्पल खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, सब उसको पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन घर के जो और लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। ऐसा होता है क्योंकि वो लोग साथ मिलके अच्छे भी ऐसे ही होता है। अब मुझे कोई अच्छा कर्म करना है, हमने कहा भाई आप भी चलो, हम लोग सब मिलके करते हैं। जब इसका पुण्य मिलना है, इसका फल मिलना है, तो हमें मिलकर के वो इसका पुण्य भोगते हैं, बड़े प्यार से रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। इसलिए अभी कई बार मन में ये विचार आते हैं, ऐसे ही बच्चे मुझे क्यों पैदा हुए, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसे माँ बाप क्यों मिले, यही भाई बहने मेरे को मिलना था क्या, ऐसे घर में क्यों, इस देश में क्यों मैं पैदा हुई। ये हिसाब है कर्म उन लोगों के साथ जिसका हिसाब होगा वो वहीं जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना, जैसे ये शरीर छोड़ेगा वैसा वो वहीं जा करके पैदा होगा, क्योंकि वहीं इसका हिसाब है, ये सब हिसाब बना हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी किसी के किए हुए कर्मों का फल किसी और को मिलना ये सिद्धांत नहीं है। माँ बाप ने अच्छा ये बुरा किया, उनके बच्चों ने उसको भुगतना है, ऐसा नहीं है। जो करता है उसी को भुगतना पड़ेगा। आप करेंगे तो आपको बच्चों को मिलेगा, ऐसा नहीं। आपने किया तो आप ही को भोगना पड़ेगा। वो बच्चा आपका इसलिए बच्चा बन के आया क्योंकि उसके साथ आपका हिसाब है, उसको आपके साथ कोई किसी जन्म के हिसाब किताब है, वो चुप तो करके जाएगा। मैं एक आपको एक कहानी सुनाऊं ताकि नींद थोड़ा भाग जाए। सीरियस हो रहा है। दो दोस्त थे। ये कहानी जो मैं बता रही हूं ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है। दो दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे, बचपन से साथ पढ़े, बड़े हुए, बिजनेस भी साथ शुरू किए, उनके दोनों के जैसे भाई जैसे रहते थे, पर थे दोस्त। दोनों की भी शादियां हुई, पर इनके भी फैमिलीज बहुत नजदीक थे, उनके भी दोनों बीबियां बहुत फ्रेंडली थे, एक दूसरे के यहाँ खाना खाना आना जाना जैसे अपना ही घर उनको ऐसा लगता था। दोनों फ्रेंड्स परदेश गए बहुत धन कमाने के लिए, और यात्रा के दौरान दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, हम ऐसा पैसा कमाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, गए, उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे कमाए। उस जमाने में शिप से आना होता था, जहाज से, पानी के जहाज से आना होता था, तो उनको आने में एक महीना लगा। बहुत सारा धन कमा करके उनको ऐसा लगा हम अपने स्वदेश जाएंगे, अच्छा बिजनेस जमाएंगे, बस अपने फैमिली के साथ अच्छा हम बिताएंगे, खुशी से शांति से रहेंगे। तो कमा करके वापस लौट रहे थे। एक दोस्त के मन में, अब दोनों दोस्त उसके वो जहाज के टेरेस होता है ना, टेरेस पर बैठ करके बातें कर रहे थे। अब एक दोस्त के मन में एक बार ऐसा विचार आया, यदि ये दोस्त मर जाएगा तो सारा धन तो मेरा, हाँ जी। तो उनको पता नहीं ऐसा क्यों आया विचार, और उनको ऐसा ये भी विचार आया, वो बात कर रहे हैं, वो दोस्त और भी बातें कर रहे हैं, उनको लगा देखो यदि मैं उसको मारने के लिए बहुत प्लान भी करने की जरूरत नहीं, अब वैसे भी हम टेरेस में बैठे हैं, उसको धक्का देंगे पानी में गिरेगा, उसको तैरना भी नहीं आता, वैसे मर जाएगा, और यदि मैं ये कहूं कि ये दुर्घटना तो सब मान भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि किसी को शक तक भी नहीं होगा। चलो उनके फैमिली को मैं थोड़ा धन दे दूंगा और बाकी तो सारा धन तो मेरा। तो उसने सचमुच ऐसा धक्का दिया, वो गिर के सचमुच में वो मर भी गया। तो सारा धन लेकर के वो वापस आया और सबसे पहले उन दोस्त के घर गया और थोड़ा धन उनको दिया और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया और मैं बचा नहीं पाया, मतलब कहानी ऐसे झूठ मूठ का बोल के। फिर वो अपना बिजनेस वगैरह जमाया, अच्छा सा रहा। थोड़े दिन के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ, वो बेटा जब से पैदा हुआ वो बीमारी रहता था, बचपन से कुछ न कुछ बीमारी, कुछ न कुछ बीमारी। रोज थोड़ा धन थोड़ा धन थोड़ा धन उसको खर्च करना ही पड़ता था। वो 12 साल का हुआ बच्चा, वो बच्चे से बहुत प्यार था क्योंकि एकलौता था, बेटा था। उसको लगा मेरा सारा बिजनेस मेरा बेटा संभालेगा, और बेटे से बेहद बेहद प्यार था उसका। उस जब 12 साल में आया, बेटा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसको हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बोला कि ये बचपन से इसको ये बीमारी है, अब इतना तक आ पहुंचा है, ये कुछ घंटों का मेहमान है। जिसको बाप को बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, और इतना कि उसको लगा कि मेरा तो जिंदगी क्या हुआ। तो खैर अब उनके रिश्तेदारों को सबको बुला लिया गया, और वो जो बच्चा 12 साल का था वो डॉक्टर को ये कहा कि आप मेरे पिताजी को बुलाइए। मेरे को भी समझ आ गया कि मैं ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूं, मैं अपने पिताजी से कुछ बात अकेले में बात करना चाहता हूं, और आप ये ध्यान रखिए कोई आए नहीं कमरे में। उसने कहा ठीक है। तो पिताजी गए और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, और वो बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप मुझे पहचाना? पिताजी को लगा ये क्यों ऐसा पूछ रहा है, कहता तुम तो मेरे बेटे हो। उसको लगा बीमारी इतना तक उसको दिमाग में फैल गया, उसको पहचान में भी नहीं आ रहा। उसको बहुत रोना आ रहा था, उसको सिर पर ऐसे हाथ फेर के कहता है आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो, आप तो मेरे बेटे हो, आपको सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो ठीक होने ही वाला नहीं है, और मेरे थोड़े समय के बाद तो मैं तो चला ही जाऊंगा, पर जाने के पहले मुझे आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। आप गौर से मुझे देखिए और मुझे पहचानिए। उसने कहा पहचानने की क्या बात है, मैंने पैदा किया तुम मेरे बेटे हो। कहता नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, जो तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बन के मैं पैदा हुआ हूं। आज अब मैं 3-4 घंटों के बाद मैं शरीर त्यागने वाला हूं। जितना मैंने कमाया था पैसा, उतना जब तक मैंने खर्च नहीं किया, मेरे ऊपर आपने खर्च अभी थोड़े समय तक जो आप खर्च करोगे उतना तक मेरा हिसाब है। मैं सिर्फ आपके घर में मेरा हिसाब चुकाने पैदा हुआ, तब मेरा आपका हिसाब चुक्त हो गया, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर 2 घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ा। अब जिस व्यक्ति को ये पता चला कि मेरा दोस्त मेरे बेटे बन के आया, अब दोस्त भी नहीं बेटा भी नहीं, दोनों से गया, उसको इतना जिंदगी में वैराग आया, उसका सारा धन अपने घर वाले को उसके दोस्त के घर में दे करके वो इतना उसको मना रियलाइज हुआ, तो वो संन्यास बन के चला गया, संन्यास ले लिया और चला गया। कहता क्या क्या मिला मुझे, एक व्यक्ति को मार के इतना पैसा लेके, हिसाब तो चुकाना ही पड़ा, पूरा हो गया। वो है अभी भी है, वो व्यक्ति है, ऋषिकेश में रहता है। कहने के भाव ये है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। कहने के भाव ये है, हमारे जिंदगी में जो भी व्यक्तियों के साथ हमारा लेना देना, हिसार के कमल भाई बाहर आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब किताब का ही होता है। सो हर इंसान की जिंदगी इट्स अ बिल्कुल मैथमेटिक्स है, हिसाब है, इसलिए कोई अपने कर्मों के हिसाब से छूट नहीं सकता। इसलिए परमात्मा हमें इतने जन्मों के, हमें तो नहीं पता कि हर कोई यहां बैठा है कि कितने कितने जन्म लिए हैं। और लास्ट बात ये, हम सबके मन में ये भी भ्रांतियां हैं कि यदि व्यक्ति गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली या पता नहीं क्या क्या, हाँ जी। पर ऐसा भी नहीं है, इंसान के रूप में आपने पाप या पुण्य किए हैं तो इंसान के रूप में ही आपको पाप और पुण्य का फल अनुभव करना पड़ेगा। आपको कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुत्ते के रूप में तो आपने किया नहीं, इंसान के रूप में किया तो इंसान के रूप में ही भुगतेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा मेरे किए का ही ये पुण्य या पाप का फल है। और ये भी भ्रांति है कि हम कोई इतने लाख लाख जन्म लेते हैं, ये भी गलत है। मैक्सिमम इंसान 84 जन्म लेगा और मिनिमम एक जन्म तो उसको लेना ही है। एक जन्म मिनिमम लेगा, 84 जन्म मैक्सिमम लेगा। ये साइकिल है ना, चक्र है, ये चक्र है। आत्मा जैसा जैसा कर्म करेगा, ये पहला और आखिर ऐसा नहीं होता, लाइफ इज अ साइकिल। तो साइकिल में हमें, आप हम सभी को ऐसा लगता है कि अभी ही आज जो हमने जन्म लिए हैं यही हमारा पहला, इसलिए क्योंकि हमें पूर्व की याद नहीं है, तो हर बार हम जन्म लेते हैं हमें ऐसा ही लगेगा कि हमारा पहला ही है, क्योंकि हमें पूर्व भूल जाता है और भूलना अनिवार्य है। हर आत्मा के अंदर दो शक्तियां हैं, एक है याददाश्त जो कि जीने के लिए बहुत जरूरी है, और एक है भूलने की शक्ति। और भूलना इतना जरूरी है जितना याद करने की। जब तक आप अतीत को नहीं भूलोगे, वर्तमान में आप जी नहीं सकोगे। कल की बात जब तक आप नहीं भूलेंगे, आज जो आपको करना है आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यह दिनों रात बना हुआ है, रात को आप सोएंगे, दिन को आप काम करेंगे। जब सोएंगे सारे दिन की बात को भूलना जरूरी है, भूल के सोएंगे, भूलने के लिए सोते हैं ताकि अगला दिन आप नए सर से काम कर सको। ऐसा ही ये जिंदगी के जो चक्र है, हमारे जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो हम यात्रा करके जाते हैं, ये शरीर का लेना शरीर का छोड़ना कोई अंतिम नहीं होता, कोई आरंभ, शरीर का लेना आरंभ, शरीर का त्यागना अंत नहीं होता। ये जैसे किताब होते ना, 200 पेजस की किताब है, 100 पेजस की किताब है, आपने एक पन्ना खोला तो एक पन्ना खोलने से किताब तो पूरा नहीं हो जाएगा, सिर्फ किताब का एक ही पन्ना पूरा हुआ, बाकी तो पन्ने हैं। आपने 10 पन्ने खोले, सिर्फ 10 पन्ने ही खोले, किताब पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार जब पूरा किताब हो जाएगा फिर पहले से शुरू होगा। ऐसे ये साइकिल है, लाइफ इज अ साइकिल, जीवन एक चक्र है, इसलिए इसको जीवन चक्र कहते हैं, जो कि होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु अंत नहीं है, जीवन कोई आदि नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात हमें, हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को याद रह जाती है, पर मोस्टली 90% से भी ज्यादा हम अतीत को भूलते हैं, और भूलना जरूरी भी है। जिन बच्चों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को पुनर्जन्म का याद है, वो एड्रेस भी बताता है, माँ बाप भी बताता है, रास्ता भी बताता है. ये एक डिजीज है. मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, ठीक है. ये याद रखना, ये एक प्रकार से उस आत्मा पाप का ही फल है. उस आत्मा को कितना तड़पना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि जिसके घर में जन्म लिया वो स्वीकार भी नहीं पा रहा है. जो उसको याद है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे 40 साल का बेबी है, 40 साल की बीवी है, चार बच्चे हैं, मेरे बिजनेस है, मेरा घर है, वो सारा याद है. अब 4 साल का बच्चा, 40 साल की बीवी, अब वो जाएगा वहां भी स्वीकार नहीं करेंगे ना. कौन 40 साल की औरत 4 साल के बच्चे को जानने के बाद भी स्वीकार कैसे करेंगे पति के रूप में. तो उस व्यक्ति के, उस आत्मा की मन पर कितना दबाव पड़ रहा होगा. यह मोह का फल. इतना किसी चीज में मोह होगा तो उसको दोनों जन्मों में तड़पना पड़ता है, क्योंकि मोह में दो मिलेंगे हमें. एक है दर्द, मोह में बहुत दर्द होता है, और दूसरा भय. जहां मोह है वहां दर्द भी है तो भय भी है. तो उस आत्मा इतना मोह इतना पकड़ के रखे हैं, जो अगला जन्म लेने के बावजूद भी, माँ बाप होने के बावजूद भी, उस पिछले का नहीं भूल पा रहा है, जिसके कारण न इधर का न उधर का, दोनों जहां से गया हुआ. जब तक वो भूलेंगे नहीं, उसके लिए ट्रीटमेंट. कुछ लोग भूल भी जाते हैं, 12 साल 8 साल के होते हैं, जैसे बड़े होते जाते भूल भी जाते हैं. कुछ लोगों को भूलने के लिए काफी तकलीफ उठाना पड़ता है. समझो 12 साल तक बच्चा भूल नहीं पाता, 12 साल तक उस बच्चे की अवस्था, उस मन पर क्या बीतती होगी, आप जरा अंदाजा तो लगाइए. सॉरी, ये कंप्यूटर भाषा कहें, सीधी सीधी भाषा कहें, वेल इट इज ट्रू. ओके, रिग्रेशन करते, हिप्नोटिज्म, या राइट. आई नो, हिप्नोसिस में प्रोग्रेसिव भी होता है और रिग्रेशन भी करते हैं, या तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है. यही पहले और यही आखिर नहीं है. हमने कर्म किए हैं इसलिए अब आए हैं, अब हैं इसलिए बाद में भी होंगे. हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे. हम तो हैं ही हैं, तो मृत्यु से क्या डर. ये शरीर न था, अब है, न होगा. जो चीज थोड़े समय के लिए है उसको संभालना जरूर है, मोह रखने में क्या फायदा, क्योंकि ये तो होगा भी नहीं ना. और आत्मा जो अविनाशी है, हम सब में से कोई नहीं मरना, आत्मा तो मरती नहीं है. तो जो चीज मैं हूं और मैं कभी नहीं मरने वाली, तो डर किसका, मोह किस बात के. आप मेरे पिताजी हैं, ये शरीर के कर्म के कारण हम पिताजी पुत्र पिता बने हैं. जब तक शरीर का हिसाब किताब है, हम पुत्र हैं, आप पिता हैं. जैसे हमारे कर्म हिसाब पूरा हुआ, पुत्र गया, पिता गया, फिर वो किसी के पुत्र बनेंगे, ये किसी के पिता बनेंगे. ये ड्रामा है ना. ड्रामा में एक एक्टर मर जाएगा, वो एक 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 फिल्म में दिखाते हैं, पर सचमुच थोड़ी मर जाता है, क्योंकि दूसरी फिल्म में वही एक्टर होता है. उमरा कहां. तो हम सभी ये बेहद विश्व रूपी नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, और हम सब एक्टर्स कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे सिनेमा में भी हमें ही तो एक्ट करना है. सिर्फ ये चोला चेंज करते, उस फिल्म में ऐसे कपड़े पहने थे, उनके घर थे गरीब था, इस फिल्म में बहुत अमीर हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, बस फर्क इतनी सी है। हम भी एक्टर्स, आत्मा माना एक्टर है, आप भी एक्टर। हाँ, पर ये है कि आपको हीरो एक्टर बनना है कि साइड एक्टर बनना है। विलन भी एक्टर है तो आपको विलन बनना है, ये आपने कर्मों के आधार पर आप कैसा एक्टर बनना आप खुद निर्णय करेंगे। ये भी नहीं है कि ऊपर वाला भेजेगा विलन बना करके, वो बना करके, नहीं, आप खुद चूज करोगे, आप खुद अपना अपना जो रोल है, अपना जो पात्र है, आप स्वयं अपने कर्मों से आप खुद चुनोगे। आपको डायरेक्टर पात्र नहीं देगा, आप खुद अपना पात्र चुनोगे। जैसा पात्र आपको करना होगा ऐसा सोच अभी से शुरू करना होगा। ये एक आखिर बात, कभी ऐसा नहीं समझना जिंदगी इतनी हो गई है, हम 80 साल के हो गए भैया, अब क्या बदलना। बदलने के लिए साल कितने भी हो, मरने के 4 दिन पहले भी आप बदल के जाओगे ना, आपकी जिंदगी आबाद, इससे उम्र से कोई मतलब नहीं है। बदलना, अच्छा बनना बुरा बनना यहां है, शरीर की बात नहीं है, आपकी उम्र के ऊपर न जाए। हमें हर आखिरी दम में भी बदलने की है तो हम बदल सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा। यदि आप अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा बने बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा है उससे अच्छा बन सकते हैं, देवता जैसे बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य से देवता कर्म से बनते हैं, मनुष्य से राक्षस कर्म से बनते हैं। ऐसे कोई भयंकर रूप वाले राक्षस नहीं होते, सुंदर रूप वाले देवता नहीं, हम ही हैं, हम में से ही देवता हैं, हम में से राक्षस हैं। अपने कर्मों से दुख देने वाला राक्षस होता है ना, इसलिए हमें क्या बनना है, कैसा रोल प्ले करना है, हमें खुद आज डिसाइड कर लेंगे। अब तक क्या प्ले किया उसको भूल जाइए, पास्ट को भूल जाइए, बीती सो बीती, अब के बाद हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। आज ईश्वर ने या जितने भी बैठे हैं, भाग्य लिखने का कलम आपके हाथ में दिया हुआ है, गुम नहीं करना। आज आप सबके हाथ में भाग्य लिखने का कलम है, कि जितना ऊंच भाग्य आपको बनाना चाहो, लंबी रेखा खींचना चाहो, आपके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। आज के बाद जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, अब के बाद, एक क्षण के बाद कलम आपके हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। ब्रह्मा ने आज आपको दे दिया, ठीक है, पर गुम भी नहीं करना, उसको गलत इस्तेमाल भी नहीं करना। ओके, ओम शांति। इस योग को राजयोग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस योग करने से किए हुए पाप भस्म होता है, आगे के लिए ऐसा कर्म न करने की शक्ति प्राप्त होती और हमारा भविष्य भी बन जाता, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। इस राजयोग से ही आत्मा के किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और पुण्य कर्म जमा होता। पुण्य कर्म कैसा करना यही भगवान ज्ञान हमें सिखाता है। आप सभी इसलिए यहां पधारे हैं ताकि आप अपने पुण्य का खाता जमा कर सको। ओम शांति।